ओम शांति। अभी अभी हमारे बीच में आदरणीय गुजरात जूनागढ़ से हमारी नेहा बहन जी ने रूहानी कमेंट्री से वतन की ओर उड़ाया। आपका सभी एक हाथ की ताली से आभार व्यक्त करेंगे। नेहा बहन, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार है। अभी हमारे बीच में साकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा की पालना में पले हुए इस विश्वविद्यालय की मोस्ट सीनियर हमारी आदरणीय राजयोगिनी प्रभा दीदी जी उपस्थित है। दीदी, इस डायमंड हॉल की सभा में आपका बहुत बहुत तहदिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी जी, आपने दिव्य और अलौकिक बाबा के साथ के अनुभव आपके पास प्राप्त है, जो आप अनेक आत्माओं को उसका अनुभव कराते हैं। आप गुजरात भरूच सबजोन संचालिका के रूप में ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आप एजुकेशन विंग के गुजरात कोऑर्डिनेटर हैं। ज्ञानसौर एकेडमी के आप ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में सेवाएं देते हैं। आज का आपका विषय है बालक सो मालिक। इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगी आदरणीय राजयोगिनी प्रभा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में गीत सुन रहे थे। प्यारे बाबा के बच्चे जो दिल के सच्चे हैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। बच्चे सो मालिक आज का टॉपिक है। बालक सो मालिक, तो बालक जब शब्द आता है, बालक अर्थात बच्चे, तो किसके बच्चे, किसने अपना बच्चा बनाया है, और हम सब किसके बच्चे बने हैं, और जिन बच्चों को बाबा रोज रोज मीठे मीठे बच्चे कह करके पुकारता है, जब हम सभी प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो कानों में पहला पहला जो शब्द पड़ता है, मीठे मीठे बच्चे। इस शब्द को सुनकर के हम आत्माओं के रोमांच खड़े हो जाते हैं। कि कौन हमें पुकार रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। वैसे देखा जाए तो लौकिक में भी किसी ने हमको ऐसे नहीं पुकारा होगा। जो स्वयं भगवान हम बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कहकर के पुकारता है, तो जब बाबा के ये मीठे शब्द हम सबके कानों में पड़ते हैं और उन शब्दों को सुन करके आत्मा मयूर नाचने लगता है, ये शब्द ना किसी व्यक्ति के हैं, न किसी ऋषि मुनि महात्माओं के हैं, ये शब्द स्वयं परमपिता परमात्मा के शब्द हैं। और जिस परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को इस संसार में से एक एक को चुन करके अपना बच्चा बनाया है, और चुन चुन करके अपनी माला में हम सबको पिरोया है, जिसके लिए महावाक्य भी है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, और कोई में भी कोई। तो हम कोटों में भी कोई बच्चे हैं, सारी विश्व में से भगवान ने हम सबको चुना है, और चुन करके सबसे प्यारा संबंध जो मात पिता का होता है, उस संबंध में परमात्मा ने हमको जोड़ा है। प्यार से कहा, मेरे मीठे बच्चे आओ, मेरे मीठे बच्चे आओ, कहां तुम इस संसार में भटक गए थे, भटकों को बाबा ने ठिकाने अर्थात अपनी गोदी में बिठा लिया है। तो हम भगवान की गोदी के मालिक बने, हम भगवान के बच्चे बने, तो जब हम भगवान के बच्चे हैं, हमें किसने अपनाया है, ये नशा चढ़ता है, हमें किसने अपनाया, हमें किसने अपना बनाया है, कोई महात्मा नहीं, कोई ऋषि मुनि नहीं, स्वयं भगवान ने हम बच्चों को अपना बनाया है, और बड़े प्यार से बाबा रोज हम बच्चों का आह्वान करते हैं, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे आओ। जब दिन की शुरुआत होती है तो अमृत वेले भी कानों में पहला शब्द कौन सा आता है, मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चों उठो। भगवान स्वयं उठाता है, भगवान ने स्वयं अपना बनाया है, भगवान स्वयं हमारी पालना कर रहा है। तो हम कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं। तो हमें अपने भाग्य के ऊपर कितना नाज होना चाहिए कि भगवान ने मुझे चुना है, भगवान ने मुझे अपना बनाया है। आज दुनिया के अंदर बाबा जिन शब्दों में कहता, पाई पैसे की पदवी वाले के साथ किसी का संबंध होता है तो वो कितना अभिमान में चलता है, मेरा इसके साथ संबंध है, मेरा ये संबंधी है, कितना नाश होता है। और उसमें कई बार उल्टे काम भी कर लेते तो भी क्या नशा रहता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा बैकबोन कौन है। जब व्यक्तियों में इतना नशा रह सकता है, हमारा तो बैकबोन, हमारा तो साथी कौन है? स्वयं भगवान है। तो हमें कितना नशा होना चाहिए कि हम सर्वशक्तिवान सर्व समर्थ बाप की संतान है, भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने मुझे अपना बनाया है और भगवान अपना बना करके हम बच्चों को मालिक बनाता है। बालक सो मालिक, ऐसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही जो माँ बाप का वर्षा होता है, जो माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है, उसका मालिक बन जाता है, अधिकारी बन जाता है। और हम बच्चे भी बाबा के बने तो हम भी बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं। बाबा ने हम बच्चों को अपना बच्चा बनाया ही है वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए। भगवान कहता है, मैं तुम बच्चों को अपना वर्षा देने के लिए। वर्षा क्या है? भगवान का वर्षा क्या है? भगवान ने हम बच्चों को क्या वर्षा दिया है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ उस वर्षे को अगर हम स्मृति में लाएं कि भगवान से हमें क्या वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं मिलता है, लेकिन भगवान ने तो बच्चे बच्ची से अलग कर दिया, भगवान के सभी बच्चे और सभी बच्चे भगवान के वर्षे के अधिकारी हैं। तो भगवान का वर्षा क्या है? एक है संगम युग का वर्षा और दूसरा है भविष्य का वर्षा। तो संगम पर हम बच्चों को बाप से कौन सा वर्षा मिलता है? जो वर्षा कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। भगवान से हम बच्चों को सर्व शक्तियां, सर्व खजाने हम बच्चों को वर्षे में मिलते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर हम खजानों की गिनती करें, है, तो गिनती में नहीं आ सकते। इतने खजानों का भगवान ने हमको मालिक बनाया है। वहां तो सिर्फ स्थूल खजाना है, लेकिन बाबा के खजाने गुण हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान है। कितने खजाने बाबा ने दिए, अनगिनत खजानों का मालिक बनाता है, अनगिनत शक्तियों का मालिक बनाता है। इसलिए उसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। बाबा ने एक एक शक्तियों से हम बच्चों को भरपूर किया है। हम बच्चों को बाबा ने खजाने में स्वमान भी दिए हैं तो वरदान भी दिए हैं। कितने स्वमान हमको रोज मिलते हैं और कितने वरदान हमको रोज मिलते हैं। दुनिया में एक वरदान प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, वो जाकर के एक वरदान मिलता था। यहां तो रोज वरदानी वरदानों में बाबा पाल रहा है, स्वमानों में बाबा पाल रहा है। कितने स्वमान दिए और कितने वरदान दिए। अगर हम उन स्वमानों की भी स्मृति रखें और वरदानों की भी स्मृति रखें कि आज बाबा ने मुझे कौन सा वरदान दिया, तो कितना नशा चढ़ेगा, चढ़ेगा ना। तो हमें बाप के हम बच्चे हैं, जो भगवान हम बच्चों को वरदानों और स्वमानों से पाल रहा है, कितना बाबा हम बच्चों को ऊंचा बना रहा है, भगवान हम बच्चों को किस नजर से देखता है, किस नजर से बाबा हमको देखता है। भगवान हम बच्चों को देखता है कि ये मेरे होवनहार क्या है, देवता है, होवनहार देखता है। अभी हम भले साधारण दिखते हैं, साधारण दिखते हैं ना, लेकिन साधारण नहीं, हम क्या बनने वाले, देवता बनने वाले। भगवान देवता बनाने के लिए आया है, तो भगवान देवता की नजर से हम बच्चों को देखता है कि ये मेरे होवनहार सतयुगी विश्व महाराजन विश्व महारानी है। तो बाबा हमारे भविष्य को देखता है और भविष्य को देख करके बाबा हम बच्चों को रोज वरदान देता है, रोज स्वमान देता है। तो हम भगवान के बच्चे, भगवान के बालक, हमें सदैव क्या रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। देखो बाबा को प्रैक्टिकल में, जब ब्रह्मा बाबा थे, बाबा को सदा नशा रहता था। मैं भगवान का बच्चा हूं और मैं क्या बनने वाला हूं, विश्व महाराजन मालिक, स्वराज अधिकारी, वो नशा बाबा के हर कर्म में दिखाई देता था। बाबा जब मुरली चलाते थे तो मुरली चलाते चलाते भी बाबा कहते थे कि बच्चे मैं ये बनने वाला। वहां श्री कृष्ण का चित्र भी होता था, आपने देखा होगा हिस्ट्री हॉल में, वहां दो चित्र लगे हुए हैं, श्री कृष्ण का चित्र भी है तो लक्ष्मी नारायण का भी ट्रांसलेट का चित्र। बाबा मुरली चलाते चलाते ऐसे गर्दन करके बाबा बोलते थे, बच्चे मैं ये बनने वाला। बाबा को सदा ये स्मृति थी, नशा था कि मैं ये बनने वाला हूं। आज हम बच्चों को नशा रहता है, भूल जाता है, इतना समय याद रहता है मैं देवता बनने वाला हूं। क्लास में आते हैं, मुरली सुनते हैं तो आता है नशा कि हम देवता बनने वाले हैं। बाबा सुनाता है, बच्चे देवता बनने वाले। फिर सारा दिन कारोबार में रहते वो नशा रहता है, नहीं रहता, भूल जाता है। तो बाबा कहता, बच्चे तुमको जो प्राप्ति हो रही है उस प्राप्ति का नशा सदैव रखो। मुझे क्या मिल रहा है, भगवान हमें क्या बना रहा है, क्या बनाने आया है और हम क्या बन रहे हैं, और भगवान ने मुझे क्यों बनाया, अपना क्यों बनाया। लौकिक में बच्चे, माँ बाप बच्चे क्यों पैदा करते हैं, अपना वर्षा देने के लिए। तो भगवान ने भी हम बच्चों को अपना क्यों बनाया है, अपना वर्षा देने के लिए। तो हम भगवान के बच्चे, भगवान का वर्षा अधिकार लेने वाले मालिक आत्माएं हैं। बच्चे मालिक होते हैं। जो बच्चा बनता है तो बनते ही छाप लग जाती है, ये वारिश है, मालिक है। तो भगवान के बच्चे हम सभी बने तो हम भी भगवान के वर्षे के मालिक बने। हम बच्चे हैं, भक्त नहीं है। भगवान कहते हैं कि भक्त तो भगवान से मांगते रहते है, और भगवान अपने भक्तों को क्या करता है, अपने बच्चों को क्या कहता है, ये मेरे बच्चे सिरताज, ये मेरे बच्चे स्वराज अधिकारी, ये मेरे बच्चे होवनहार देवता। उनको बाबा हम बच्चों को रोज मालेकम सलाम बोलता है, रोज नमस्ते करता है। बाबा की मुरली में हम रोज नमस्ते शब्द सुनते हैं ना, मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते है? तो किसको नमस्ते करता है, किसको नमन करता है बाबा? जो बाबा के बच्चे बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते करता है, जो भगवान सलाम करता है। तो हम कितने भाग्यवान हैं है? तो अपने भाग्य के ऊपर हमें सदैव क्या रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए। और जब भाग्य के ऊपर नशा रहता है तब प्रैक्टिकल जीवन के अंदर से वो दिखाई देता है, नशा दिखाई देता है। लौकिक में जो नशा करता है तो उसकी हालत तो दिखाई देती है ना, जिसने नशा किया होता है, पिया होता है, तो उसके ये जीवन से क्या दिखाई देता है। तो हम सबने भी ये नशा है तो हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। हम स्वयं को साधारण नहीं, हम असाधारण हैं। हम स्वयं कितने भाग्यवान हैं, अपने भाग्य को नहीं भूलो। जब भाग्य को भूलते हैं तभी क्या होता है, अनेक प्रकार की पेपर आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, मुश्किल लगता है। और अगर भाग्य याद है, प्राप्ति याद है, तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, प्राप्ति सहज करा देती है। तो हम सभी कार्य तो करते हैं लेकिन प्राप्ति को भूल जाते हैं। तो इसलिए फिर क्या होता है, मुश्किल लगता है, अब कैसे होगा, क्या होगा है? और अगर प्राप्ति है तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। आज कोई कह दे फलानी जगह ये चीज मिलती है और उससे फायदा है तो लोग क्या करेंगे, भागेंगे ना, देखते हैं कि वहां जाना मुश्किल होगा, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं सोचता इंसान, प्राप्ति के पीछे भागता है। तो जब हमें प्राप्ति दिखाई देगी तो हमें कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगेगा। तो बाबा हमेशा हम बच्चों को यही कहते, प्राप्ति अधिकार, संगम युग का हमारा अधिकार क्या है, संगम युग में बाबा से हम बच्चों को क्या प्राप्ति, और प्राप्ति भी सहज और कितनी है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। बाबा ने कितना हम बच्चों को सहज करके बताया, सहज सहज रीति में, जैसे आजकल बच्चों को खेल खेल में पढ़ाते हैं ना, तो भगवान भी हमको क्या करता है, खेल खेल में पढ़ाता है, सहज कर पढ़ाता है, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, कैसे याद करो वो भी सिखाता है बाबा। जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो मुरली में बाबा क्या सिखाता है, बच्चे तुम मुझे कैसे याद करो, वो भी बाबा सिखाता है कि मेरे बच्चों को सहज हो, तो सहज कर देता है और सहज करके ही कराता है, तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि बाबा जानता है कि ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे बच्चे कितना भक्ति में भटक भटक करके आए हैं। भक्ति करते करते बाबा कई बार नहीं कहता, मेरी माताएं बच्चे थक गई हैं, मैं बच्चों के थकावट उतारने के लिए आया हूँ। भगवान कहते हैं ना, मैं बच्चों की थकावट उतारने, बहुत भक्ति की, बहुत भटके, अभी भगवान ने हम बच्चों को भटकने से छुड़ा दिया है, कहा भटकना नहीं। सहज बाबा हम बच्चों को सिखाता है, कितना सहज बाबा ने किया, तो बाबा खुद सहज करके प्रैक्टिकल करके बाबा ने दिखाया। देखो कोई भी कार्य सिर्फ कहने से नहीं, लेकिन बाबा ने जो कार्य करने के लिए कहा उसको बाबा ने प्रैक्टिकल स्वयं किया और स्वयं करके दिखाया कि तुम बच्चों को ऐसे करना है। तो जब स्वयं हम बाबा हम बच्चों को करके दिखाता है तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो हम बाबा जैसे हम बच्चों को सहज सिखाता है उस अनुसार करें। तो सहज बाबा ने क्या सिखाया कि अपनी स्मृति में रहो, तुम बच्चों की स्मृति क्या है, जितना हम स्मृति में अपने रहेंगे, और स्मृति भी प्राप्ति की स्मृति, तो खुशी रहेगी और उस खुशी से जो भी हम कर्म करेंगे वो कर्म सहज हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते अपने को बालक समझो और मालिक है, तो हम मालिक भी हैं, जितना अपने को मालिक समझेंगे उतना कर्म में करना प्रैक्टिकल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो बाबा हम बच्चों को कहते बच्चे तुम अभी इस समय न्यारे और प्यारे बनो। तो न्यारे और प्यारे कैसे, भगवान स्वयं न्यारा और प्यारा रहा, हम बच्चों का प्यारा भी रहा तो स्वयं न्यारे भी रहे। तो हर कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे बनना है, जितना हम न्यारे और प्यारे बनेंगे उतना हर कर्म सहज हो जाएगा। तो जो मालिक होते ना उसको कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं होता है। तो मालिक बनकर के कार्य करना है, बच्चे बनकर के रहना है, और जो कार्य करना है वो मालिक बनकर के करना है। तो जो मालिक होते हैं उनको करना क्या हो जाता है, सहज हो जाता है। तो मालिक बन करके अगर हम करेंगे तो कार्य भी सहज रहेगा। और मालिक बनने के लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि विशेष अपने जीवन में हमको क्या लाना है, साक्षी होकर के कर्म करना है। तो कोई भी कार्य अगर साक्षी होकर के करते हैं तो कार्य में मुश्किल नहीं आती है। और अगर मैं करता हूं, मैंने ये किया बुद्धि में आता है, तो कर्म भी मुश्किल हो जाता है। तो कर्म करते हुए भी हमें अपने जीवन में अपने को साक्षी बनाना है। तो साक्षी होकर के कर्म कर रहेंगे तो साक्षी होकर कर्म करने वाले की बुद्धि में क्या रहेगा कि मैं करने वाला हूं और कराने वाला स्वयं बाप है। तो स्वयं बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। तो जब बाबा कोई भी कार्य कराएगा तो कार्य क्या होगा, सफल होगा। कई बार हम कोई भी कार्य करते हुए कभी सफलता आती है, कभी निष्फलता आती है, कभी कार्य कोई मुश्किल लगता है, तो अगर उस कार्य को हम करने के लिए स्वयं को निमित्त समझे और कराने वाला बाबा है, तो बाबा कराता है और हम करने वाले हैं तो कार्य सहज होगा। बाबा हमेशा कहते अपने को इंस्ट्रूमेंट समझो और कराने वाला बाबा है। हमने प्रैक्टिकल में बाबा के जीवन में और दादियों के जीवन में भी ये चीज का अनुभव किया। हमारी दादियां जो भी थीं, तो कोई भी कार्य करती थी तो हमेशा कार्य करते पहले कहती थी, करण करावन हार बाबा है, बाबा हमसे करा रहा है, हम तो इनके इंस्ट्रूमेंट हैं। और जो बाबा कराएगा तो वो कार्य कैसा होगा, श्रेष्ठ कार्य होगा। तो बाबा कराने वाला और हम करने वाले हैं तो कार्य सहज भी होगा और श्रेष्ठ भी होगा। इसके ऊपर मेरे को एक मिसाल याद आता है कि बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी, जो कि हमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका रही, तो दादी जी जब भी कोई कार्य करते थे तो हमेशा यही कहते थे कि बाबा कराता है और मैं करती हूं। कई बार तो बड़े प्यार से कहती थी कि बाबा मेरी उंगली पकड़ के कार्य करा रहा है। तो एक बार दादी जी से अब्दुल कलाम आए थे, ने दादी जी से एक प्रश्न किया कि दादी जी मैं आपसे पूछता हूं कि आप कोई भी कार्य करते हो तो सहज रीति से करते हो, और कोई भी आपके पास कोई प्रश्न लेकर के आता है तो आप उसका जो उत्तर देते हैं उससे वो सेटिस्फाई क्यों हो जाता है, जो भी उत्तर आप देते हैं उससे सब आपसे सेटिस्फाई होते हैं, तो उसका राज क्या है। उन्होंने दादी से प्रश्न पूछा कि आप जो उत्तर देते हैं आपसे सब सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसका राज हमें बताइए। तो दादी जी ने उनको उत्तर दिया, कहा कि जब मेरे पास कोई भी आता है तो आकर के मुझे कोई भी प्रश्न पूछता है, मैं बड़े प्यार से उसका प्रश्न सुनती हूँ, समस्या सुनती हूँ, कोई प्रॉब्लम है सुनती हूँ, और सुनने के बाद मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा अब इस आत्मा को आप मेरे द्वारा इसके प्रश्न का उत्तर दो। और आप ही उत्तर दो, तो बाबा जो उत्तर देगा वो कौन सा उत्तर देगा है? भगवान जो कहेगा तो भगवान का उत्तर सुन करके जिसका जो प्रश्न होगा, जिसकी जो समस्या होगी, उसका समाधान होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो मेरे द्वारा बाबा करा रहा है। कभी भी दादी जी ने ये नहीं कहा कि मैं कर रहा, कराने वाला बाबा है और बाबा कराता है। हम तो सेवाधारी हैं और हम सेवा कर रहे हैं। तो जितनी मालिक थे उतने ही बालक बन करके कार्य किया। हम सेवाधारी हैं, बाबा करा रहा है। और बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा अपने बच्चों को उत्तर देगा, बाबा अपने बच्चों का कार्य कराएगा। तो बाबा जो भी कार्य कराएगा वो कार्य कितना सहज होगा। तो दादियों के अंदर, बाबा के अंदर भी क्या था? बालक भी थे और मालिक भी थे, दोनों का बैलेंस था। भाई करण करावनहार बाबा करा रहा है और मैं कर रही हूं, तो क्या रहेंगे? हल्के रहेंगे। आज कोई भी कार्य होता है तो हम स्वयं अपनी बुद्धि में ये रखते, मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो क्या होता है? जब मैं करता हूं तो जहां मैं आएगा वहां क्या आएगा? जहां मैंपन आएगा वहां अभिमान आएगा, और जब अभिमान आता है तो स्वमान भूल जाता है, और जब स्वमान भूलेगा तो जो भी कार्य करेगा वो कैसा होगा? स्वमान में रह करके अगर हम कार्य करते हैं तो हम सफल होंगे, अभिमान में रह करके अगर हम कार्य करते हैं तो क्या होंगे? सफल होंगे? नहीं होंगे ना। इसका शास्त्रों में भी गायन है, है? क्या गायन है? रावण क्यों मारा गया है? दिखाते ना, राम को राम, रावण को राम ने नहीं मारा, लेकिन रावण को किसने मारा? उसके अभिमान ने मारा ना? तो कोई भी कार्य में सफल बनने के लिए क्या करना है? स्वमान में रहना है। जितना स्वमान में रहेंगे, बाबा मेरे द्वारा कराए, मैं निमित हूं, निमित बन करके कार्य करने में, कार्य में सफलता है। अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो कोई भी कार्य करते हुए हमें बाबा न भूले। बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, कार्य बाबा का है, मेरा नहीं है। हम क्या करते हैं? मैं ये करती हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये कराया, मैंने वो किया, तो उसमें क्या होती है? जितनी सफलता होनी चाहिए वो सफलता नहीं मिलती है, जितनी खुशी होनी चाहिए खुशी नहीं होती, जितनी उस कार्य से हमें प्राप्ति होनी चाहिए उतना नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या होता है? उसके अंदर हमारा स्व का अभिमान आ जाता है। तो हमें सदैव कार्य करते हुए कि हम कर्तव्य हैं और करने का अभिमान ना है। जैसे बाबा कहते थे ना कि बच्चे नेकी कर दरिया में डाल, कि कोई भी एक कार्य करके दरिया में डाल दो, माना मैंने किया नहीं, करण करावनहार बाबा है और बाबा ही कराता है, कार्य भी बाबा का है, हम सब तो उसके इंस्ट्रूमेंट है। बाबा के सिवाय कोई कार्य करा सकता है क्या? कोई भी कार्य हम करते हैं तो बाबा ने कराया, बाबा कराता है तब हम करते हैं। देखो आज आत्माओं के अंदर भी कई विशेषताएं होती है, कहते हैं ना कोई कला होती है, विशेषता होती है आत्माओं के अंदर। तो कितनी विशेषताएं वाली आत्माएं होती हैं, लेकिन उनकी विशेषता को जब तक कोई प्लेटफॉर्म स्टेज नहीं मिलता है तो वो अपनी विशेषता को, अपनी कला को प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आत्माओं के अंदर विशेषता है, हमारे अंदर भी विशेषता है, लेकिन हमारी विशेषता को भगवान ने प्लेटफॉर्म दिया, भगवान ने स्टेज दिया, तब हम वो कार्य कर सकते और अपनी कला दिखा सकते, अपनी विशेषता दिखा सकते। अगर भगवान ने हमें स्टेज न दिया होता, कला को कैसे प्रदर्शित करते, कर सकते थे? तो बाबा ने हम साधारण आत्माओं को, भले विशेषताएं थी, हमारी विशेषता को भगवान ने अपने कार्य में लगाया है। तो बाबा ने अपने कार्य में लगाया और भगवान ने लगाया, तो विशेषता किसकी हुई, मेरी हुई कि भगवान की हुई? भगवान की हुई ना, क्योंकि भगवान ने विशेषता को देखा और देख करके मुझे बाबा ने वो स्टेज दिया, मुझे वो मौका दिया, मुझे वो स्थान दिया, तब मैंने वो कार्य किया। अगर मुझे नहीं मिलता तो हम करते? तो बाबा हमसे करा रहा है, है? हमेशा हमको ये बुद्धि में रहना चाहिए कि जो भी कार्य है वो भगवान का है, भगवान हमसे करा रहा है, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमसे करा रहा है। तो कभी भी क्या होगा, कार्य करने का अभिमान नहीं आएगा। जब बाबा ने, इतनी बड़ी बाबा हमारी हस्ती थी, ब्रह्मा बाबा तो मालिक था ना, बाबा मालिक होते हुए भी क्या बन गया, क्या बन गया, बालक बन गया ना। कितना बाबा निरहंकारी बन गया, हा? एक मिसाल मैं आपको बाबा का सुनाती हूँ। आप सबने मधुबन में बाबा का कमरा देखा है, देखा है ना? आप सब बाबा के कमरे में जाते हो ना, जाते हो ना? तो बाबा के कमरे में क्या देखते हो? कितना साधारण है। बाबा की खटिया कैसी है? कितनी साधारण खटिया। ब्रह्मा बाबा क्या थे? ब्रह्मा बाबा अपनी लौकिक लाइफ में क्या थे? कितनी धन संपत्ति के मालिक थे ना बाबा, जिनका राजाओं के साथ व्यवहार था। राजा ही कहेंगे ना, बाबा राजाओं के साथ व्यवहार रखते थे, तो जिन राजाओं से मिलते थे वो राजाएं भी बाबा को बोलते थे क्या, कि दादा लेखराज, राजा हम हैं लेकिन हम नहीं, आप हो। संस्कार थे ना बाबा के। तो बाबा इतना धनवान होते हुए भी बाबा ने अपने आप को क्या बना दिया, एकदम साधारण, सिंपल, मैं बाबा का बच्चा हूं। सब कुछ त्याग दिया बाबा ने, और सब कुछ त्यागने के बाद भी बाबा को कितना नशा था, कितनी खुशी थी। क्यों? बाबा को सदैव अपना लक्ष्य स्मृति में था कि मैं क्या बनने वाला हूं और मुझे किसने अपनाया है, मेरे तन में कौन आया है, मेरे से क्या कार्य करा रहा है, वो सदैव स्मृति थी। इसलिए बाबा को सदैव क्या था, नशा रहता था। तो हम भी बाबा के बच्चे, बाबा जो हमारा इतना ऊंच था और बाबा ने क्या कर दिया, अपने को एकदम सिंपल बना दिया। तो सिंपल होकर के जो भी कार्य बाबा ने किया, उस कार्य में सहजता रही, उसमें सर्विस हुई, इतनी बाबा की जो सेवा आगे बढ़ी, हा? वो सेवा बढ़ने का कारण क्या था? हा? सेवा जो बढ़ी उसका कारण यही था कि बाबा ने अपने को एकदम सिंपल बना दिया। हमारी दादियां क्या थी और एकदम सिंपल बन गई। तो इस सिंपल सिटी ने ही सेवा की, और जितना हम सिंपल रहेंगे हमारी जो विशेषताएं हैं वो सेवा में कार्य करेंगी। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अपने को एक अपने स्वमान में रहो। स्वमान जो भगवान ने हमको दिया है, क्या स्वमान भगवान ने दिया? वो स्वमान सदा स्मृति में रहो। एक स्वमान नहीं दिए बाबा ने, अनेक स्वमान बाबा ने दिए। उन अनेकों स्वमान की एक एक स्वमान भी अगर हम सारे दिन स्मृति में रखे कि आज का स्वमान ये है, आज का स्वमान ये है, तो भी नशा रहेगा। आज आप सोचते ना, मुरली में स्वमान मिलता है, वरदान रोज मिलता है, सब लिखते हैं डायरी में, हैं? वे आज का स्वमान ये है और आज का वरदान ये, सिर्फ डायरी में नोट करते लिखते हैं, लेकिन स्मृति में कितना आता है? स्मृति में आता है? और जब तक स्मृति में नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए हमको उसको स्मृति में लाना बहुत आवश्यक है। तो जितनी हमारी स्मृति पावरफुल होगी उतनी हमारी स्थिति भी पावरफुल होगी, और जब स्थिति हमारी पावरफुल होगी तो उस स्थिति में रहकर के हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारा कर्म क्या होगा? पावरफुल होगा। तो बाबा हम बच्चों को यही स्मृति दिलाते कि जो कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है, हा? क्या कार्य दिया बाबा ने हम बच्चों को? कौन सा कार्य बाबा ने अभी दिया है? रोज बाबा स्वमान, ये मेरे विश्व परिवर्तक बच्चे, विश्व के सेवाधारी बच्चे, हा? तो हम विश्व परिवर्तक की स्मृति रहती है, विश्व की स्मृति रहती है, हम सेवाधारी ये स्मृति रहती है। सेवाधारी भी कौन से सेवाधारी? सेवा भी हमें कौन सी मिली है? एक सेवा शब्द भी अगर लेते हैं तो सेवा भी हमें कौन सी मिली है? किस सेवा के हम निमित्त बने? जो बाबा ने ट्राई ने विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी है? तो विश्व कल्याण करने वाले, विश्व सेवाधारी, तो अगर विश्व सेवाधारी की स्मृति भी अगर रहती है तो वो स्मृति ही कार्य कराती है, और जो स्मृति कार्य कराएंगी तो कार्य भी क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। तो कार्य को सहज करने के लिए हमें स्मृति को बहुत पावरफुल करना है। जितनी हमारी स्मृति पावरफुल रहती है उतना कार्य भी सहज हो जाता है। अगर स्मृति पावरफुल नहीं होती है तो सहज नहीं होता। जैसे देखो, दिखाते हैं कि युद्ध के मैदान में योद्धा लोग जाते थे, है ना, युद्ध करने के लिए जाते थे, तो उनको पहले क्या स्मृति दिलाई जाती? स्मृति का तिलक लगाया जाता था कि तुम क्षत्रिय हो, हाँ, तुमको युद्ध के मैदान में जाना है, तुमको विजयी भव बनना है, तो वो स्मृति लेकर के जाते थे, तो उन्हें नशा क्या रहता था? मुझे विजयी बनना है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को क्या कहा? तुम बच्चे विश्व सेवाधारी, तुमको विश्व की सेवा करनी है, तुम सच्चे सेवाधारी हो, तुम सेवा के निमित्त बने हो, तुम्हें भगवान ने सेवा के निमित्त बनाया, हा? भगवान ने हमें अपने सेवा के कार्य के निमित्त बनाया, ये हमारा कोई कम भाग्य नहीं है कि मुझे भगवान की सेवा के निमित्त किसने चुना? सेवा करने के लिए किसने चुना? भगवान ने चुना है, मुझे भगवान ने चुन करके और मैं भगवान में के उसमें चुना गया, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा भाग्य है। लौकिक दुनिया में किसी कहां कोई चुन लिया जाता है तो कितना अभिमान से चलते हैं, हमको किसने चुना है, हमको भगवान ने चुना है और अपने कार्य के लिए चुना है, और हम इतने भाग्यशाली हैं जो हम भगवान के कार्य के निमित्त बने, भगवान का कार्य करने के हम मालिक बने, भगवान ने हमें मालिक बनाया, भगवान ने अपना बालक बनाया, ये मेरा कितना बड़ा भाग्य है। तो भाग्य का स्मरण करेंगे तो भी सहज हो जाए। तो सदैव अपने भाग्य का स्मरण करते हुए हमें चलना है, और चलते रहेंगे तो जो जिस मार्ग पर हम बाबा के बच्चे चल रहे हैं वो मार्ग हमको क्या लगेगा, सहज लगेगा। दुनिया में तो कहते हैं कि प्रभु का मार्ग सहज नहीं है, मुश्किल है, कहते ना हरि का मार्ग क्या है, गुजराती में कहावत बोलते ना, हरि का मार्ग सूरा का है, हाँ मुश्किल का है, हाँ लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा मार्ग क्या है, सहज है। तो सहज किसने किया है? सहज करावन भार बाबा ने किया, जो करण करावन हार बाप है उसने सहज किया। तो बाबा ने सहज किया और बाबा के हम बच्चे बने, इसलिए हमको सहज हो गए। अगर बाबा के बच्चे नहीं बनते तो सहज होता क्या, वो भी मुश्किल लगते। तो भगवान ने हमको अपना बना करके हम बच्चों को मालिक बना दिया है। तो हम सभी भगवान के बच्चे बालक सो मालिक आत्मा है, हम मालिक हैं, भगवान ने हमको अपना बनाया, ये बहुत हमारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य है। इस भाग्य के नशे में अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो सहज ते सहज हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ को सहज करने के लिए अपने बाप के बच्चे सो हम मालिक हैं। तो इस नशे में अगर हम रहेंगे तो बहुत खुशी रहेगी, और खुशी के साथ साथ हर कार्य करना भी सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
Let me be. शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। विकराल विनाश खड़ा आगे
है, अंत अब हम सब का शिव पिता ने बतलाया है।
शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है।
शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को भगाना है।
शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तो अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है।